ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली हम सभी याद करेंगे। क्या कहा बाबा ने आज? ज्ञान सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का ये संगम है। तो इस संगम पर कैसा संगम है? ये हीरे समान बनाने वाला। तो ज्ञान सागर कौन है? शिव बाबा। और ब्रह्मपुत्रा? ब्रह्मा बाबा। और आप क्या हैं? अच्छा, होशियार हैं आप लोग उत्तर देने में। तो हम सब ज्ञान नदियां हैं। तो जब ज्ञान सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का मिलन, माना शिव बाबा ब्रह्मा बाबा, हम आत्माओं का मिलन परमात्मा बाबा के साथ में होता है, शिव बाबा के साथ में होता है, तो हमारा जीवन हीरे जैसा बन जाता है। पहले कैसा जीवन था? कौड़ी तुल्य। कौड़ी तुल्य माना शूद्र वाली जीवन, जिस जीवन में हमारा कोई न, जो आया सो बोला, जो आया सो खाया, जो आया सो किया, कोई जीवन में नियम नहीं, संयम नहीं, तो वो हो गया कौड़ी तुल्य जीवन। और हीरे तुल्य जीवन माना श्रीमत मर्यादा पर चलने वाला संयमित जीवन, पवित्र जीवन, ब्राह्मण जीवन, ये है हीरे तुल्य जीवन। तो बाबा भी हमें हीरा बना रहे हैं। और क्या कहा बाबा ने प्रश्न में? क्या था? कितनी सुंदर, कई बार हम पूछते हैं ना, विनाश कब होगा, सतयुग की दुनिया कब आएगी, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा, सतयुग कब? आज बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया, सतयुगी राजधानी की स्थापना कब और कैसे होगी? जब पतित सृष्टि की सफाई होगी, अर्थात पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तब तो सतयुगी सृष्टि की स्थापना होगी। अच्छा, कई बार पूछते हैं कई लोग, विनाश कब होगा? जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? डरेंगे तो नहीं? सबसे अच्छी बात बाबा ने यही किया, जो विनाश की डेट नहीं बताई। अगर डेट बताता तो हम बाबा को याद नहीं कर पाते। अगर आपको बता दिया जाए, चलो आपका 24, बाबा आपको बता दे 24 घंटे का समय है, तो जो आपको योग करना है, दान पुण्य करना है, कर लो। कर पाएंगे? या घंटा ही याद, एक घंटा बीता, दो घंटा बीता। तो इसलिए बाबा ने कहा डेट कॉन्शियस नहीं, लेकिन सोल कॉन्शियस। बाबा ने विधि बता दी कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। इंतजार नहीं करो, लेकिन इंतजाम करो। विनाश तब होगा जब पढ़ाई, बाबा कहते ना, जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी, कर्मातीत अवस्था बन जाएंगे। पहले आप संपन्न संपूर्ण तो बने। अच्छा, फिर आगे बाबा ने कहा, जब तक एक भी पतित आत्मा होगा तब तक क्या नहीं होगा? हाँ, नई संवत की शुरुआत है ना, वो नहीं होगी। भल राधे कृष्ण का जन्म हो जाए, हो जाएगा, लेकिन तब सतयुग कहेंगे? नहीं कहेंगे। कब कहेंगे सतयुग? लक्ष्मी नारायण जब गद्दी पर बैठेंगे, है ना, तब वन वन, है ना, तब होगा एक धर्म एक राज। सतयुग माना ही एक धर्म एक राज्य, एक भाषा एक कुल एक मत। फिर बाबा ने कहा ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। और आगे बाबा ने क्या कहा? जब तक जीना है तब तक पुरुषार्थ करते रहना है, थकना नहीं है। हम थक बहुत जल्दी जाते हैं। कौन थकता है? कौन थकता है? वैसे भी है ना, कोई चल रहा हो तो थकेगा कौन? जिसके पास बोझा होगा और जो हल्का होगा वो थकेगा? नहीं थकेगा। तो पुरुषार्थ में यदि हम हल्के रहेंगे, सारी बोझ बाबा को दे देंगे, कोई भी चिंताओं का बोझ, अनेक प्रकार के बोझ हैं सांसारिक है ना, समस्याओं का बोझ, चिंताओं का बोझ, फिकर का बोझ, तो बाबा कहते मुझे दे दो। पसंद है बाबा को बोझ देना? और बाबा कहते हल्के रहो, लाइट रहो, हल्के रहोगे तो उड़ोगे, बोझ रहेगा तो चल भी नहीं, उड़ने की बात तो बहुत दूरी रही, हम चल भी नहीं पाएंगे। बाबा को अच्छा नहीं लगता कि मेरे बच्चे और बोझ, मेरे बच्चे और मेहनत, मेरे बच्चे उदास, बाबा को अच्छा नहीं लगता। आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा बताओ माताएं, आपका बच्चा उदास बैठा हो तो आपको अच्छा लगेगा? क्या कहेंगे? अपने बच्चे को उदास देखेंगे तो क्या कहेंगे? हम बैठे हैं ना, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आप क्यों चिंता करते हो, हम बैठे हैं ना, क्या बात है? उसको आप खुश देखना चाहेंगे। ऐसे बाबा भी हमें खुश देखना चाहते हैं कि बच्चे जो भी बोझ है वो सारा मुझे दे करके हल्के होकर के उड़ो। और कौन सी बात हमें पुरुषार्थ में थकावट डालती है? जब हम दूसरों को देखते हैं, है ना? तो बाबा ने कहा दूसरों को नहीं देखना है। किसको देखना है? अपने आप को देखना है। और देखने की आदत पड़ी तो बाबा ने कहा मुझे देखो ना, जो सर्वगुणों का सागर है उसको हम नहीं देखते हैं, जिसके अंदर को कमी कमजोरी है उसको देखते हैं। और ये कर्म सिद्धांत है कि जो हम दूसरों में देखते हैं वही चीज हमारे अंदर आ जाता है। अगर हम कमी कमजोरी देखेंगे तो कमी कमजोरी आ जाएगा, गुण विशेषता देखेंगे तो गुण विशेषता आ जाएगा। हम क्या चाहते हैं, हमारे अंदर क्या आवे, गुण विशेषता या कमी कमजोरी? सारे लोग बोल रहे हैं ना, कुछ और तो विचार नहीं, गुण विशेषता आवे ना। तो गुण विशेषता लाने के लिए क्या देखना पड़ेगा? गुण विशेषता देखना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ में हम अपने टीचर बनकर के खुद देखें कौन सी बात है जो थकावट लाती है, हम है ना थक जाते हैं। थक जाते हैं तो बोल कैसे निकलता है? हम पुरुषार्थ में थके हुए तो इस बोल से आप समझ जाना। कई बार हम कहते हैं ना, अरे सब चलता है, कौन संपन्न संपूर्ण बना है, हर एक के अंदर कोई ना कोई कमी कमजोरी होती है, ठीक है, बन जाएंगे, कर लेंगे। तो ये सब बात सिद्ध करता हम थक गए हैं। तो थकना नहीं है, हल्के रहेंगे तो थकेंगे नहीं, बाबा को साथ रखेंगे तो थकेंगे नहीं। और आगे बाबा ने क्या कहा? बाबा की शिक्षाओं को अमल में लाना है। अमल में लाना माना ध्यान रखना, उसको स्वरूप में लाना, कर्म में लाना, व्यवहार में लाना, जीवन में लाना, ये है अमल में लाना। ऐसे नहीं कि है ना, जैसे हम कोई कुछ बोलता है और हम क्या करते हैं, एक कान से सुन दूसरे निकाल देते हैं। तो हम पूछते हैं तुम्हें समझ में नहीं है क्या हमने क्या बोला? या कई बार ऐसा होता है हम कुछ बता रहे होते हैं, वो सामने वाला उसका ध्यान कहीं और रहता है, फिर वो अचानक पूछा अच्छा आपने क्या कहा, तो हम क्या कहते हैं? आप कहां थे? भले वो सामने बैठा हुआ सुन भी रहा है लेकिन ध्यान कहीं और। तो हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं तो हम देखें हम ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, हम क्लास में उपस्थित हैं, शरीर रूप से तो उपस्थित हैं, लेकिन मन से, मन बुद्धि भी यहीं पर है, जिसको बाबा कहते हैं एकाग्रता, एकाग्रचित होकर के सुन रहे हैं। तो बाबा की शिक्षाओं को अमल में लाना है, जीवन में लाना है, तब हमारा प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ेगा। लोग हमें देख करके कहेंगे, तब हमें ज्ञान सुनाना नहीं पड़ेगा, हमें देख करके खुद कहेंगे आप कहाँ जाते हैं, आपके आप बहुत खुश दिखाई पड़ते हैं, हमें भी ले चलो आप जहां जाते हैं, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा, जब तक आप जब से आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाने लगे आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। तो ये सबसे बड़ी सेवा होती है, जीवन के द्वारा सेवा करना। फिर आगे बाबा ने क्या कहा, बाप समान क्या बनना है, मास्टर ज्ञान सागर। देखो अपना सारा ही टाइटल बाबा ने हमें दे दिया। बाबा ने कहा तुम मास्टर ज्ञान सागर हो, तो मास्टर ज्ञान सागर का कर्तव्य क्या होता है, दूसरों को भी सुनाना, जैसे बाबा ने हमें सुनाया। तो मास्टर ज्ञान सागर भी हम कब बनेंगे, जब हम मुरली रोज सुनेंगे, जब हम मुरली का मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, तब तो बनेंगे ना। तो बहुत जरूरी होता है मुरली सुनकर के उसके ऊपर चिंतन करना। चिंतन करने से वो खजाना हमारा अपना बन जाता है, फिर वो जीवन में कभी भी भूलता नहीं है। और आगे बाबा ने क्या कहा, रूहानी पंडा बनकर के क्या करना है, रूहानी पंडा अर्थात दो प्रकार के पंडे होते हैं, एक जिस्मानी पंडे और दूसरे रूहानी पंडे। आप कौन से पंडे हैं, रूहानी पंडे। जिस्मानी पंडे जिस्म की यात्रा, शारीरिक यात्राएं, और आप कौन सी यात्रा कराते हैं रूहानी पंडे, रूह की यात्रा परम धाम। बाबा ने कहा करो यात्रा खूब, सूक्ष्म वतन जाओ, परम धाम जाओ, सतगी दुनिया जाओ, मन बुद्धि से यात्रा करते रहो, मधुबन के चारों धामों की यात्रा करो, बिना खर्च यात्रा करो, रोज ही यात्रा करते रहो। तो रूहानी यात्रा अर्थात रूह की यात्रा, मन बुद्धि। लेकिन ये यात्रा तभी हम कर सकेंगे जब हमारी मन बुद्धि की सफाई होगी, स्वच्छ होगा। नहीं तो हम यात्रा करने बैठ चलेंगे परम धाम की, लेकिन यात्रा दूसरी जगह हो जाएगा, कहीं के कहीं चले जाएंगे। और आगे बाबा ने क्या कहा, अपना जीवन कैसा बनाना है, हीरे समान। मुझे याद आ रहा है कि एक बार बड़ी दादी, अभी बड़ी दादी का मास चल रहा है ना, प्रकाश मणि दादी का, तो बड़ी दादी से किसी ने पूछा, दादी आपने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया जो आप बड़ी दादी बन गई, है ना, दादी से बड़ी दादी बन गई। तो दादी ने कहा मैं अपने आप को, बड़ी सुंदर बात बताई, कि मैं अपने आप को अर्थात अपनी आत्मा को मैं अपने सामने, अपने हाथों, अपने सामने, अपने सामने इमर्ज करके हम अपने आप से पूछते हैं, ए आत्मा तुम पूरी तरह से बेदाग हीरा हो। तो कहा हमारे अंतर्मन से जैसे आवाज आती है कि हाँ मैं पूरी तरह से बेदाग हूं, तो कहा मैं इतने में संतुष्ट नहीं होती हूं कि अंतरात्मा ने बता दिया और हम मान गए। हम बाबा को आह्वान करते हैं, बाबा आप बताओ ये मेरी आत्मा जो है ये पूरी तरह से बेदाग हीरा बनी है। तो बाबा कहते हैं हाँ बच्ची तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से बेदाग हीरा है। तो कहा तब मैं संतुष्ट होती हूं। आप सोचो इतना सूक्ष्म पुरुषार्थ, तो वेदाग हीरा, हीरा बनना माना क्या? जैसे कई बार कईयों का जब हम उदाहरण देते हैं तो हम कहते ना ये तो हीरा है भाई, हीरा। किस आधार से हमने हीरा कहा? उसके व्यक्तित्व के आधार से, उसकी महानता के आधार से, उसके महान संस्कारों के आधार से, उसके अच्छे आचरण के आधार से, उसके अच्छे व्यवहार के आधार से हम कह दिया। हमने क्या कहा? हीरा। तो हीरा अर्थात जिसको कोई उंगली ना दिखाए, अरे ये तो है ही ऐसा, है ना, तो दाग हो गया ना, माना वे दाग। हमारा जीवन अनेकों के लिए उदाहरण मूरत हो, अनेकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो, है ना, अनेकों के लिए एग्जाम्पल हो, तब तो कहेंगे ना बेदाग हीरा। तो हम ऐसे हीरे बने हैं, ये खुद की चेकिंग की बात होती है। अगर दूसरा कोई हमें कुछ कहेगा आपके अंदर ये थोड़ी सी कमी है, आप परिवर्तन कर लो, तो हमें थोड़ा अभिमान भी आ सकता है कि अरे हम इतने पुराने हैं, हमें सब पता है, सुनने की क्षमता नहीं होगी। लेकिन यदि हम खुद के टीचर बनकर के खुद को समझाते हैं तो हम अपने आप को अवश्य परिवर्तन कर लेंगे। तो वेदाग हीरा बनना है तो उसके पहले खुद का टीचर खुद बनना है, खुद से अच्छा शिक्षक दूसरा और कोई नहीं हो सकता। अच्छा, वरदान क्या था? वरदान श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा मन बुद्धि को, वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। तो बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई कि वृत्ति का कनेक्शन वाणी और कर्म से होता है। यदि हमारी वृत्ति खराब है, वृत्ति में निगेटिव भाव भाव निगेटिव है, तो वाणी और कर्म ऑटोमेटिक। तो अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना है। वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना माना अपनी वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना रखना, सबके प्रति कल्याण की भावना रखना। क्योंकि बाबा ने कहा जैसी वृत्ति होता है वैसे क्या फैलता है? वाइब्रेशंस फैलता है, और वैसा ही वायुमंडल बनता है। वृत्ति अगर आपकी शुद्ध हो गई, श्रेष्ठ हो गई, तो सारी सृष्टि ही आपको श्रेष्ठ नजर आएगी, सब आत्माएं अच्छे नजर आएंगे। इसलिए बाबा ने कहा आत्मिक वृत्ति बनाओ, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रखो। आत्मिक वृत्ति होगी तो आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो जाएगी। तो श्रेष्ठ शुद्ध वृत्ति माना कैसे कहेंगे? वृत्ति हम पहले वृत्ति समझ ले। कई बार हम कहते ना ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलने वाला ही नहीं है। तो हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया, ये हमारी वृत्ति बना देती है। और अच्छी वृत्ति, ये बहुत अच्छी आत्मा है ना, सब आत्माओं का भला हो, अंदर से जब निकलता है सब आत्माओं का कल्याण हो, सब आत्माएं आगे बढ़ें। तो हमारी अच्छी वृत्ति होती है तो दूसरे का तो भला होता है, लेकिन उसके पहले हमारे खुद का भला हो जाता है, खुद का कल्याण हो जाता है। क्योंकि जो हम सोचते हैं, जिसके लिए भी सोचते हैं, वो सबसे पहले हमारा ही हो जाता है वैसा। अच्छा, स्लोगन क्या था? क्या था स्लोगन? विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के मन के भाव को सहज जान जाएंगे। तो अशरीरीपन का अभ्यास बार बार सारे दिन में। बाबा ने कहा जैसे और चीज को महत्व देते हो, और बात की वैल्यू रखते हो, ऐसे अशरीरीपन का अभ्यास बीच बीच में चलता रहे, क्योंकि बाबा ने कहा यही अशरीरीपन का अभ्यास अंत में जो अंतिम परीक्षा होगी उसमें पास विद आनर बनाएगी। अंतिम परीक्षा माना कौन से पेपर आएगा, एक सेकेंड, अंत में बाबा के सिवाय और कुछ याद आया तो फेल। अंत में कौन याद आए, बाबा याद आए। तो किसको बाबा याद आएगा, जिनका लंबे काल से अशरीरी बनने का अभ्यास होगा, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास होगा, शरीर से न्यारे होने का अभ्यास होगा। और यही शरीर से न्यारेपन होने का अभ्यास ही योग का संपूर्ण सुख देता है, योग में एकाग्रता लाती है। तो आज की मुरली से हम कुछ होमवर्क करेंगे, है ना। ये मुरली रिवीजन करने का उद्देश्य यही है कि इससे आप रोज करें, कोई आज की बात नहीं है, रोज अपने घरों पर रह करके भी मुरली सुने और सुनने के बाद कुछ प्रैक्टिकल में करें। तो आज की मुरली से हम स्वमान का अभ्यास करेंगे, मैं विश्व परिवर्तक हूं। विश्व परिवर्तक अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाले, शुभ भावना शुभ कामना रखने वाले, स्वयं को बदलने वाले, स्व परिवर्तन करने वाले। और धारणा में यही बात कि अपनी वृत्ति को हर आत्मा के प्रति बहुत शुभ और श्रेष्ठ रखना है। और चिंतन, इसी बात के ऊपर हम चिंतन कर लेंगे कि वृत्ति हमारी खराब क्यों होती है, क्यों निगेटिव बनती है, वृत्ति हमारी सदा शुभ रहे श्रेष्ठ रहे उसके लिए हम किन बातों के ऊपर ध्यान रखें। और योग अभ्यास के लिए सारे दिन में बार बार बीच बीच में अशरीरीपन का अभ्यास। तो आज सारा दिन अशरीरीपन का खूब अभ्यास करते रहें, विश्व परिवर्तक बने, अपनी वृत्ति को बहुत शुभ और श्रेष्ठ रखें, रूहानी पंडा बनकर के रहें, अपने जीवन को हीरे समान बनाएं और बाबा जो शिक्षाएं देते हैं उसको अमल में लाते रहें, मास्टर ज्ञान सागर बनकर के रहें। इन्हीं शुभ भावना के साथ ओम शांति, थैंक यू, धन्यवाद।